डिप्टी कलेक्टर की कहानी का शेष अंश, पेज 113। फिर भीतर जा अपने कमरे में छड़ी रखकर नल पर हाथ पैर धोकर भोजन के लिए चौके में जाकर बैठ गए। पत्नी ने खाना परोस दिया। सकलदीप बाबू ने मुंह से कौर चुबलाते हुए पूछा, बबुआ को मेवे दे दिए थे? वह आज सायकाल जब कचहरी से लौट रहे थे तो मेवे लेते आए थे। उन्होंने मेवे को पत्नी के हवाले करते हुए कहा था कि इसे सिर्फ नारायण को ही देना और किसी को नहीं। जमुना को झपकी आ रही थी, लेकिन उसने पति की बात सुन ली। चौंक कर बोली, कहाँ मेवा ट्रंक में रख दिया था? सोचा था बबुआ घूमकर आएंगे तो चुपके से दे दूंगी, पर लड़के तो दानव दूत बने हुए हैं। ओना कोना अतरा सतरा सभी जगह पहुंच जाते हैं। टुनटुन ने कहीं से देख लिया और उसने सारा का सारा खा डाला। टुनटुन सकलदीप बाबू का सबसे छोटा, 12 वर्ष का अत्यंत ही नटखट लड़का। क्यों? सकलदीप बाबू चिल्ला पड़े। उनका मुंह खुल गया था और उनकी जीभ पर रोटी का एक छोटा टुकड़ा दृष्टिगोचर हो रहा था। जमुना कुछ न बोली। अब सकलदीप बाबू ने गुस्से में पत्नी को मुंह चिढ़ाते हुए कहा, खा गया खा गया। तुम क्यों न खा गई? तुम लोगों के खाने के लिए ही तो लाता हूं ना। खा गया। जमुना भी तिनक उठी। तो क्या हो गया? कभी मेवा मिश्री फल फूल तो उनको मिलता नहीं। बेचारे खुद्दी चुन्नी जो कुछ मिलता है उसी पर सब्र बांधे रहते हैं। अपने हाथ से खरीद कर कभी कुछ दिया भी तो नहीं गया? लड़का ही तो है, मन चल गया खा लिया। फिर मैंने उसे बहुत मारा भी, अब उसकी जान तो नहीं ले लूंगी। अच्छा तो खाओ, तुम और तुम्हारे लड़के खूब मजे से खाओ। ऐसे खाने पर लानत। वह गुस्से से थर थर कांपते हुए चिल्ला पड़े और फिर चौके से उठकर कमरे में चले गए। जमुना भय, अपमान और गुस्से से रोने लगी। उसने भी भोजन नहीं किया और वहां से उठकर चारपाई पर मुंह ढककर पड़ गई। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल भी सकलदीप बाबू का गुस्सा ठंडा न हुआ और उन्होंने नहाने धोने तथा पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि जब टुनटुन जागा तो उसने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि उसने मेवा क्यों खाया। जब उसको कोई उत्तर न सूझा और वह भक्कू बनकर अपने पिता की ओर देखने लगा तो सकलदीप बाबू ने उसे कई तमाचे जड़ दिए। डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा इलाहाबाद में होने वाली थी और वहाँ रवाना होने के दिन आ गए। इसी बीच नारायण ने इतना अधिक परिश्रम किया कि सभी आश्चर्यचकित थे। वह 18-19 घंटे तक पढ़ता। उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने पाती। बस उसे पढ़ना था। उसका कमरा साफ मिलता, उसका बिछौना बिछा मिलता। दोनों जून गांव के शुद्ध घी के दाल भात रोटी तरकारी मिलती। पेज 114। शरीर की शक्ति तथा दिमाग की ताजगी को बनाए रखने के लिए नाश्ते में सवेरे हलवा दूध तथा शाम को मेवा या फल। और तो और, लड़के की तबीयत न उचटे इसलिए सिगरेट की समुचित व्यवस्था थी। जब सिगरेट के पैकेट खत्म होते तो जमुना उसके पास 4-5 पैकेट और रख आती। जिस दिन नारायण को इलाहाबाद जाना था, सकलदीप बाबू की छुट्टी थी और वह सवेरे ही घूमने निकल गए। वह कुछ देर तक कंपनी गार्डन में घूमते रहे, फिर वहां तबीयत न लगी तो नदी के किनारे पहुंच गए। वहां भी मन न लगा तो अपने परम मित्र कैलाश बिहारी मुख्तार के यहाँ चले गए। वहां बहुत देर तक गप सड़ाका करते रहे और जब गाड़ी का समय निकट आया तो जल्दी जल्दी घर आए। नारायण को विदा करने के लिए उसके 4-5 मित्र भी स्टेशन पर पहुंचे थे। जब तक गाड़ी नहीं आई थी, नारायण प्लेटफॉर्म पर उन मित्रों से बातें करता रहा। सकलदीप बाबू अलग खड़े इधर उधर इस तरह देखते रहे जैसे नारायण से इनका कोई परिचय न हो। और जब गाड़ी आई और नारायण अपने पिता तथा मित्रों के सहयोग से गाड़ी में पूरे सामान के साथ चढ़ गया तो सकलदीप बाबू वहां से धीरे से खिसक गए और व्हीलर के बुक स्टॉल पर जा खड़े हुए। बुक स्टॉल का आदमी जान पहचान का था। उसने नमस्कार करके पूछा, कहिए मुख्तार साहब, आज कैसे आना हुआ? सकलदीप बाबू ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लड़का इलाहाबाद जा रहा है डिप्टी कलेक्टर का इम्तहान देने, शाम तक पहुंच जाएगा। देवड़े दर्जे के पास जो डिब्बा है ना, उसी में है। नीचे जो चार पांच लड़के खड़े हैं वे उसके मित्र हैं। सोचा, भाई हम लोग बूढ़े ठहरे, लड़के इम्तहान विम्तहान की बात कर रहे होंगे, क्या समझेंगे, इसलिए इधर चला आया। उनकी आंखें हास्य से संकुचित हो गईं। वहां वह थोड़ी देर तक रहे, इसके बाद जाकर घड़ी में समय देखा। कुछ देर तक तार घर के बाहर तार बापू को खटर पटर करते हुए निहारा और फिर वहां से हटकर रेलगाड़ियों के आने जाने का टाइम टेबल पढ़ने लगे। लेकिन उनका ध्यान संभवतः गाड़ी की ओर ही था, क्योंकि जब ट्रेन खुलने की घंटी बजी तो वहां से भागकर नारायण के मित्रों के पीछे आ खड़े हुए। नारायण ने जब उनको देखा तो उसने झटपट नीचे उतरकर पैर छुए, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, उन्होंने लड़के से बुदबुदाकर कहा और दूसरी ओर देखने लगे। पेज 115। नारायण बैठ गया और अब गाड़ी खुलने ही वाली थी। अचानक सकलदीप बाबू का दाहिना हाथ अपने कोट की जेब में गया। उन्होंने जेब से कोई चीज लगभग बाहर निकाल ली और वह कुछ आगे भी बढ़े, लेकिन फिर ना मालूम क्या सोचकर रुक गए। उनका चेहरा कुछ तमतमाशा गया और जल्दीबाजी में वह इधर उधर देखने लगे। गाड़ी सीटी देकर खुल गई तो सकलदीप बाबू चौंक उठे। उन्होंने जेब से वह चीज निकालकर मुट्ठी में बांध ली और उसे नारायण को देने के लिए दौड़ पड़े। वह दुर्बल तथा बूढ़े आदमी थे, इसलिए उनसे तेज क्या दौड़ा जाता, पर पैरों में फुर्ती लाने के लिए अपने हाथों को इस तरह भाज रहे थे जैसे कोई रोगी मरिय लड़का अपने साथियों के बीच खेल कूद के दौरान कोई हल्की फुल्की शरारत करने के बाद तेजी से दौड़ने के लिए गर्दन को झुकाकर हाथों को चक्र की भांति घुमाता है। उनके पैर थपथप की आवाज के साथ प्लेटफॉर्म पर गिर रहे थे और उनकी हरकतों का उनके मुख पर कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। बस यही मालूम होता कि वह कुछ परेशान है। प्लेटफॉर्म पर एकत्रित लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। कुछ लोगों ने मौज में आकर जोर से ललकारा, कुछ ने किलकारियां मारी और कुछ लोगों ने दौड़ के प्रति उनकी तटस्थ मुद्रा को देखकर बेतहाशा हंसना आरंभ किया। लेकिन यह उनका सौभाग्य ही था कि गाड़ी अभी खुली ही थी और स्पीड में नहीं आई थी। परिणामस्वरूप उनका हास्यजनक प्रयास सफल हुआ और उन्होंने डिब्बे के सामने पहुंचकर उत्सुक तथा चिंतित मुद्रा में डिब्बे में सिर निकालकर झांकते हुए नारायण के हाथ में एक पुड़िया देते हुए कहा, बेटा इसे श्रद्धा के साथ खा लेना, भगवान शंकर का प्रसाद है। पुड़िया में कुछ बतासे थे जो उन्होंने कल शाम को शिवजी को चढ़ाए थे और उसे पता नहीं क्यों नारायण को देना भूल गए थे। नारायण के मित्र कुतूहल में मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते रहे और जब वह पास आ गए तो एक ने पूछा, बाबूजी क्या बात थी, हमसे कह देते? सकलदीप बाबू यह कहकर कि कोई बात नहीं, कुछ रुपए थे, सोचा मैं ही दे दूं, तेजी से आगे बढ़ गए। परीक्षा समाप्त होने के बाद नारायण घर वापस आ गया। उसने सचमुच पर्चे बहुत अच्छे किए थे और उसने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि यदि कोई बेईमानी न हुई तो वह इंटरव्यू में अवश्य बुलाया जाएगा। घर वालों की बात तो दूसरी ही थी, लेकिन जब मोहल्ले और शहर के लोगों ने यह बात सुनी तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। लोग व्यंग्य में कहने लगे, हर साल तो यही कहते हैं बच्चू, वह कोई दूसरे होते हैं जो इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। लेकिन बात नारायण ने झूठ नहीं कही थी, क्योंकि एक दिन उसके पास सूचना आई कि उसको इलाहाबाद में प्रादेशिक लोक सेवा आयोग के समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। पेज 116। यह समाचार बिजली की तरह सारे शहर में फैल गया। बहुत साल बाद इस शहर से कोई लड़का डिप्टी कलेक्टर के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सायंकाल कचहरी से आने पर सकलदीप बाबू सीधे आंगन में जा खड़े हो गए और जोर से ठठाकर हंस पड़े। फिर कमरे में जाकर कपड़े उतारने लगे। सकलदीप बाबू ने कोट को खूंटी पर टांगते हुए लपक कर आती हुई जमुना से कहा, अब करो न राज। हमेशा शोर मचाए रहती थी कि यह नहीं है, वह नहीं है, यह मामूली बात नहीं है, यह मामूली बात नहीं है कि बबुआ इंटरव्यू में बुलाए गए हैं, आया ही समझो। जब आ जाए तभी न, जमुना ने कंजूसी से मुस्कुराते हुए कहा। सकलदीप बाबू थोड़ा हंसते हुए बोले, तुमको अब भी संदेह है? लो, मैं कहता हूँ कि बबुआ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं आए तो मैं अपनी मूछ मुड़वा दूंगा, और कोई कहे है या न कहे, मैं तो इस बात को पहले से ही जानता हूँ। अरे मैं ही क्यों, सारा शहर यही कहता है। अंशिका बाबू वकील मुझे बधाई देते हुए बोले, इंटरव्यू में बुलाए जाने का मतलब यह है कि अगर इंटरव्यू थोड़ा भी अच्छा हो गया तो चुनाव निश्चित है। मेरी नाक में दम था, जो भी सुनता बधाई देने चला आता। मोहल्ले के लड़के मुझे भी आकर बधाई दे गए हैं। जानकी, कमला और गौरी तो अभी अभी गए हैं। जमुना ने स्वप्निल आंखों से अपने पति को देखते हुए सूचना दी, तो तुम्हारी कोई मामूली हस्ती है? अरे तुम डिप्टी कलेक्टर की माँ हो ना जी। इतना कहकर सकलदीप बाबू ठहाका मारकर हंस पड़े। जमुना कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने मुस्की काटकर साड़ी का पल्ला सिर के आगे थोड़ा और खींचकर मुंह टेढ़ा कर लिया। सकलदीप बाबू ने जूते निकालकर चारपाई पर बैठते हुए धीरे से कहा, अरे भाई, हमको तुमको क्या लेना है? एक कोने में पड़कर राम नाम जपा करेंगे। लेकिन मैं तो अभी यह सोच रहा हूं कि कुछ साल तक और मुख्तारी करूंगा। नहीं, यही ठीक रहेगा। उन्होंने गाल फुलाकर एक दो बार मूछ पर ताव दिए। जमुना ने इसका प्रतिवाद किया, लड़का मानेगा थोड़े, खींच ले जाएगा। हमेशा यह देखकर उसकी छाती फटती रहती है कि बाबूजी इतनी मेहनत करते और वह कुछ भी मदद नहीं करता। कुछ कह रहा था क्या? सकलदीप बाबू ने धीरे से पूछा और पत्नी की ओर न देखकर दरवाजे के बाहर मुंह बाकर देखने लगे। जमुना ने आश्वासन दिया, मैं जानती नहीं क्या, उसका चेहरा बताता है। बाप को इतना काम करते देखकर उसको कुछ अच्छा थोड़े लगता है। अंत में उसने नाक सिकोड़ लिए। नारायण 15 दिन बाद इंटरव्यू देने गया और उसने इंटरव्यू भी काफी अच्छा किया।